दिनों से होता है, इसलिए 12 चौके 48, 288 में 48 जोड़ दीजिएगा। मति ज्ञान 336 प्रकार से होता है, अपन रोज इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं अपने को, इतने प्रकार से अपन ज्ञान हासिल करते हैं, ये सब मति ज्ञान। और श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और वो दो प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। दो प्रकार का श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान समझते हैं, विशेष मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानना। सपोज करो आचार्य श्री एक उदाहरण देते हैं, नीचे पानी गिरा हुआ दिखाई पड़ा, तो पानी को जान लेना ये तो हो गया मति ज्ञान, लेकिन अब ये पानी कहां से आया होगा, ऊपर से तो नहीं गिर सकता है, ऊपर तो बढ़िया व्यवस्था है और आसपास कहीं भी, अरे अच्छा वो कमंडल रखा हुआ उसमें से गिरा, तो पानी के माध्यम से कमंडल का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये शुद्ध ज्ञान। पेंसिल के माध्यम से किसकी है, महाराज जी की है, महाराज जी के बारे में मालूम पड़ गया, पेंसिल देखी थी और अब जब हम यहां नहीं है तब, अरे यहां छूट जाए अगर तो आप क्या कहेंगे, पेंसिल देखकर, अरे महाराज जी की है, आपने पहले तो जानी पेंसिल, ये तो हो गया मति ज्ञान, फिर महाराज जी की है, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। इतना आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य। तीर्थंकरों के द्वारा जो द्वादशांग के रूप में दिव्य ध्वनि में कहा जाता है वह सब अंग प्रविष्ट है, और अंग प्रविष्ट के आधार पर या द्वादशांग के आधार पर गणधर और उनके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की जाती है वो सब अंग बाह्य है। आज वर्तमान में द्वादशांग रूपी अंग प्रविष्ट ज्ञान लुप्त हो चुका है, ऐसी दिगंबर जैनों की मान्यता है, और जो शेष ग्रंथ हैं वे सब अंग बाह्य श्रुत हैं, उसी अंग ज्ञान के आधार पर लिखे गए आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ वो सब अंग बाह्य में आते हैं। अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, 10 वैकालिक इत्यादि के भेद से, और अंग प्रविष्ट द्वादश भेदम 12 प्रकार का है। आचारम सूत्रकृतम स्थानम संवाय नामधेयम व्याख्या प्रज्ञप्तिम चा ज्ञात्री गथोपासकाध्ययने वंदे नंतक्रद्दस्त मनुत्तरोपवादिक दशम दशावस्तम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामी परिकर्म च सूत्रम च स्तौमि प्रथमान योग पूर्वगते सार्धम चूलिकयापिपा पंचविधम दृष्टिवादम च। ये 12वां दृष्टिवाद अंग है और 11 अंगों के नाम आचार अंग से लेकर के विपाक सूत्र तक ये नाम है। मैं एक एक नहीं बोल पाऊंगा, मुझे खुद भी एक एक अलग अलग याद नहीं है, मैंने एक सूत्र पूरा बोल दिया उसमें 11 आ गए। और दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं, परिकर्म सूत्र प्रथमान योग चूलिका और पूर्वगत, उस पूर्व के भी 14 भेद हैं। इस तरह अपन कई बार सुनने में आता है 11 अंग 14 पूर्व, ये पूरा का पूरा द्वादशांग कहलाता है। इस तरह पहले ज्ञान हुआ करता था, ऐसा मानिएगा कि पूरा समुद्र जैसे है वो तो द्वादशांग है और उसमें से एक बूंद है वो अंग बाह्य, जो आज जितने भी शास्त्र हैं आज वो सिर्फ एक बूंद के बराबर हैं, और अंग ज्ञान कैसा है जैसे समुद्र के बराबर, कितना रिच रहा होगा, कितना ज्ञान समृद्ध रहा होगा। इससे हमें गौरव होना चाहिए कि केवल ज्ञान सकल चराचर को जान लेता है और उसमें जो विषय आता है उसको शुद्ध ज्ञान जान लेता है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी केवल ज्ञान के पूरे विषय को जान लेते हैं, इतने विशेष ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान है। भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चर्चा खत्म हो गई, अवधि ज्ञान की चर्चा शुरू। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नार की जीवों को होता है, भव ही जिसमें कारण है उसे भव प्रत्यय कहते हैं, बाई बर्थ जिनको वो ज्ञान हो जाता है, जैसे चिड़ियों को बाई बर्थ उड़ने की सामर्थ्य रहती है, ऐसे ही देव और नारकियों को अवधि ज्ञान बाई बर्थ वहां उत्पन्न होते ही और उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। शोपसम निमित्ता षड विकल्प शेषाणाम, जो मनुष्य तिर्यंश हैं उनके लिए तो कर्म के विशेष शोपसम होने पर और वह भी गुणों के संयोग से सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि के होने पर और जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है उसे क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं, वो शेष अर्थात देव और नायकी जीवों के ही होता है। इसके भेद प्रभेद बहुत सारे हैं पर मेरे पास उतना समय नहीं है। हो गया अवधि ज्ञान के बारे में। ऋजु विपुल मती मना पर्ययः, दूसरे के मन के माध्यम से उसके मन में उठने वाले विचारों को जान लेना मना पर्यय ज्ञान है। वो दो प्रकार का, सरल मन वचन काय की चेष्टा से जो जाना जाता है वह ऋजुमती है, और जो कुटिल मन वचन काय की क्रियाओं को देख करके भी जानने की सामर्थ्य है वो विपुलमती ज्ञान कहलाता है। विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेषा, ऋजुमती और विपुलमती में विशुद्धि की अपेक्षा से विपुलमती अधिक विशुद्ध तर है ऋजुमती की अपेक्षा। और एक बार विपुलमती मना पर ज्ञान हो जाने पर केवल ज्ञान होने तक वह छूटता नहीं है, ऋजुमती ज्ञान तो प्रतिपाती है अर्थात छूट भी सकता है। इसलिए सूत्र जी में कह दिया कि विशुद्धि की अपेक्षा और प्रतिपात अप्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मना पर्ययो, अवधि ज्ञान और मनह पर्यय ज्ञान दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बावजूद भी दोनों में अलग अलग अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और अपने अपने विषय की अपेक्षा से, विषय के मतलब सब्जेक्ट नहीं लेना, विषय के माध्यम के मायने हैं जानने की जो पदार्थ हैं उनको कितनी क्षमता है, कितने पदार्थों को जान सकते हैं, ये कहलाता है विषय। अवधि ज्ञान और मनह पर्यय ज्ञान में ये अब दोनों में अब अलग अलग अंतर है। आत्मनः प्रसादो विशुद्धि, जो आत्मा में जो प्रसाद भाव है उसे विशुद्धि कहते हैं, या कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि है, कषाय की तीव्रता का नाम संक्लेश है, तो विशुद्धि की अपेक्षा है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनह पर्यय ज्ञान वाले की विशुद्धि अधिक है। हाँ, और क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन मना पर्यय ज्ञान का क्षेत्र कितना है, ढाई द्वीप में स्थित मनुष्य और तिरंज के मन में स्थित बात को ही वे जान सकते हैं, इसलिए उनका क्षेत्र इतना ही है। अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता, लेकिन मना पर्यय ज्ञान, मतह पर्यय ज्ञान सिर्फ मनुष्य और मनुष्यों में भी छठे सातवें गुणस्थान में विचरण करने वाले मुनि महाराज, और सिर्फ मुनि महाराज में सभी मुनि महाराजों को कहते नहीं, सात रिद्धि में से कोई ना कोई एक रिद्धि जिनके पास है उन्हें ही मनह पर ज्ञान हो सकता, उसका स्वामी विशेष ही है। अवधि ज्ञान तो किसी को भी, चारों गतियों के जीव को भी, नारकी को भी हो जाता है, लेकिन मनह पर ज्ञान मनुष्य को, मुनि को, और विशेष रूप से जो है, और साथ में वर्धमान चारित्र जिनका चारित्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो रिद्धिधारी है, ऐसे मुनि महाराज को मनह पर ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र जो है वो परमाणु है, या कह लीजिएगा कि कार्बन द्रव का अनंतमा भाग है, लेकिन उसका भी अनंतमा भाग ऋजुमती का और उसका भी अनंतमा भाग मना पर्यय ज्ञान का विषय, विषय विपुलमती मना पर्यय ज्ञान का विषय बनता है। इस तरह विषय की अपेक्षा देखा जाए तो सूक्ष्म होता जाता। सपोज करिएगा, एक उदाहरण ले लीजिएगा, ज्यादा इसमें मत पड़िएगा, नहीं समझ में आता तो, जैसे कि मेरे हाथ में एक सिक्का है, आपके हाथ में एक सिक्का है एक रुपये का। अब अवधि ज्ञानी से कोई पूछे कि मेरे हाथ में क्या है तो बता देंगे वो कि सिक्का है एक रुपए का है, जबकि उन्होंने नहीं देखा। और मनह पर्यय ज्ञानी, तो आपके मन में आप ये सोच रहे होंगे कि देखें मेरे हाथ में एक रुपया है, बता पाते कि नहीं, तो वो आपके मन के आलंबन से बता देंगे कि आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में एक रुपया है या नहीं है, डायरेक्ट एक रुपया है ऐसा नहीं बता पाएंगे। मनह पर्यय ज्ञानी आपके मन में जो विचार होगा उसके माध्यम से बता पाएंगे वो, और सूक्ष्मता है कि नहीं। देखिए अवधि ज्ञान बहुत स्थूल है, ऐसे ऐसे बता दिया, लेकिन जब आपके मन में विचार है उस विचार का आलंबन लेकर के फिर बताया तो सूक्ष्मता है। इस तरह से मनह पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान के बारे में है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विषय है वो क्या है, छांव द्रव्य और उसकी कुछ पर्यायें, समस्त पर्यायों को नहीं जानता है, थोड़ी सी ही पर्यायों को परोक्ष रूप से जानता है, इंद्रिय मन की सहायता से जानता है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान उसके विषय के, उरूपिषु अवधे, अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ किसे कहते, जिनमें रूप रस गंध और स्पर्श होता है, जो विजिबल हैं, हमारे इंद्रियों के पकड़ में आने वाले हैं, वे सब रूपी पदार्थ हैं। और जो इनविजिबल हैं, अल्ट्रा विजिबल हैं, जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में ही नहीं आते हैं, एंटी मैटर जिसको अपन कहें, उन सबको भी जानने वाला तो अवधि ज्ञान नहीं जान सकता, उनको तदनंत भागे मना पर्यस्य, जितना अवधि ज्ञान जानता है उनका अनंतमा भाग मन पर्य ज्ञानी सूक्ष्म रूप से जान सकता है। और सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान तो सब द्रव और उसकी अनंत समस्त पर्यायों को जानने वाला है। इस तरह पांचों ज्ञानों के बारे में चर्चा हुई। एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं, एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक साथ एक जीव को चार ज्ञान हो सकते हैं। कौन कौन से ज्ञान चार हो सकते हैं, और अगर हो तो एक ज्ञान हो सकता है, दो ज्ञान हो सकते हैं, तीन हो सकते, चार हो सकते, अधिकतम पांचों ज्ञान नहीं होते हैं, क्योंकि पांचों ज्ञान आवश्यक ही नहीं है। एक केवल ज्ञान हो जाए तो बाकी ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं होती, वे तो क्षयोपशमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान शायक है। इसलिए एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा। अपन सबको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अपन जान लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। और तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मन परे ज्ञान, ये तीन हो सकते हैं। और चार हो तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान, ये चारों एक जीव को हो सकते हैं। एक होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। इस तरह से मति श्रुता अवधियो विपर्यस्य, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान, ये सब जो है वो सम्यक दर्शन के साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के साथ भी रह जा सकते हैं, इसलिए ये विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए मति श्रुता अवधियो विपर्यस्य, इनमें विपरीतता भी आ जाती है। क्यों आ जाती है, कि सद सतो रविशेषाद्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्, जैसे किसी आदमी ने शराब पी ली हो और उन्मत्त हो तो कभी माँ को माँ कह देता, कभी माँ को बहन भी कह देता, कभी बेटी को बेटी कह देता, बेटी को बहन भी कह देता, उसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा कह रहा है। सद असत जो है जैसा है वैसा भी कह देता, कभी कभी जो जैसा नहीं है वैसा भी जानने लगता है। इसलिए यदि इच्छया अपनी इच्छा से, जैसे कोई पागल या उन्मत्त व्यक्ति है, तो इसी तरह ज्ञान के साथ तो मजा है कि गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास, ज्ञान का मामला यही है। हाँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान है, सो मिथ्या ज्ञान होगा और सम्यक दर्शन के साथ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता। ज्ञान का तो ऐसा है, तो कह रहे हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अगर मिथ्यात्व के साथ हैं तो वे कुमति कुश्रुत और कुवधि या विभंगवधि कहलाएंगे, और नहीं तो समीचीन है सम्यक दर्शन के साथ तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान कहलाएंगे। प्रमाण की चर्चा हो गई। मैंने आपसे 15 मिनट का कमेंट किया था जिसमें से 12 मिनट हो गए, 3 मिनट और हैं। नैगम संग्रह व्यवहार रजरुजु सूत्र समविरूढैवं भूतानयाः, ये सात भेद नए के हैं। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, समविरूढ नए एवं भूत, शब्द नए, समविरूढ नए और एवं भूत नए, ये सात नए। नए किसे कहते हैं, वस्तु को जानने की सापेक्ष पद्धति का नाम, इन रिलेशन टू, ये मेरे पिताजी हैं क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ, आपके भाई हो सकते क्योंकि आप इनके भाई हैं, मे बी पॉसिबल। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये ही हैं, नहीं किसी ना किसी अपेक्षा से, तो इन रिलेशन टू। नए हमेशा रिलेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो दो तरह के नए होते हैं विशेष रूप से, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, देखने का ढंग, किसी भी चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो दो ही है, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक व्यवहार में और एक वास्तव में। हम जीव हैं ठीक है, लेकिन अकेले इससे काम थोड़ी चलेगा। हम मनुष्य हैं लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। हम किसी के बेटे हैं, हाँ इससे काम चलेगा, थोड़ा परिचय आपका हो जाए। इस तरह हम व्यवहार से जानते हैं और वास्तव में क्या है, हम जीव हैं। दोनों तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पर उसके साथ भेद कर दिए। नैगम संकल्प मात्र ग्राही नैगम नया, जिसमें कोई व्यक्ति मात्र संकल्प कर लेता किसी चीज का और उसके माध्यम से वो उस चीज को कहना शुरू कर देता, जैसे कि कोई अम्मा जी गैस का चूल्हा, अब हम पहले कहने वाले थे कि लकड़ी लेने गई, तो हमने कहा ये तो ओल्ड उदाहरण हो जाएगा, है ना। मान लीजिए वो गैस का चूल्हा सिलगा रहे और उनसे पूछें कि क्या कर रहे, तो वो कहेंगी भात बना रहे। अब जला तो रही चूल्हो गैस, वो कह रही भात बना रहे, कहते हाँ मैंने भात बनाने का चूंकि संकल्प किया है इसलिए मेरा ये कथन सही है। कथन करने की शैली है ये, नैगम नय की पद्धति यही है कि संकल्प कर लिया तो आप उस चीज का कथन कर सकते हैं। संग्रह, जब हम किसी भी चीज को उसकी एक जाति के अनुसार इकट्ठा करके बोल देते हैं, सबको कह दिया जीव। अब देखो इतने सारे लोग संग्रह करके हमने कथन कर दिया तो हमारा कथन सही माना जाएगा, हाँ सब जीव, अकेला जीव। अब जीव में भी कौन संसारी हैं, कौन मुक्त हैं, कौन त्रस हैं, कौन स्थावर हैं, और कौन पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हैं, कौन दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री, कौन संगी और असंगी, ये डिवाइडेशन कौन करेगा। ये सब संग्रह न ग्रहणात विषय समीचीन रूपे न व्यवहारते इति व्यवहारः। संग्रह न के द्वारा ग्रहण किए गए विषय को समीचीन रूप से भेद करते जाने का नाम व्यवहार है, इसे व्यवहार न कहते हैं। और जैसे कि कोई कहता ना कि बिल्टी आई है दुकान में, अब बिल्टी आई है सो में तो दुनिया भर को सामान है, बिल्टी तो हो गई संग्रह, और अलग अलग निकाल के धरो कि ये टूथपेस्ट में टूथपेस्ट, ये ब्रश में ब्रश रखो, ये डब्बी वो किया है जो होते रखो, अलग अलग कर दिया अलग अलग व्यवहार। पहले बिल्टी क्या कह रहे थे, संग्रह, सब पूरी सब एक साथ। इसी तरह संग्रह और व्यवहार। ऋजु सूत्र, वर्तमान पर्याय मात्र ग्राही ऋजु सूत्र नया। वर्तमान पर्याय को हम ग्रहण करेंगे और किसी चीज को नहीं ग्रहण करेंगे। आप वर्तमान में जो है मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं, आप पहले देव रहे होंगे, आगे हो सकता है आप फिर से देव हो, मनुष्य हमें क्या लेना देना, वर्तमान में तो आप मनुष्य हैं, तो उसी को जानना, उसी का कथन करना, ये ऋजु सूत्र नए हैं। और संज्ञा लक्षण इत्यादि की अपेक्षा से, या लिंग और की अपेक्षा से, और इन सब के तरफ ध्यान न देते हुए और जो कथन किया जाता है वो शब्द शब्द नहीं कहलाता है। इसको सामान्य रूप से अपन क्या कहें कि एक ही अर्थ को बताने वाले कई शब्दों को हम प्रयोग कर लें तब भी वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे कि भात को अपन लोग भात कहते हैं, कोई कूल भी कहते हैं, कोई चरू भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, भात के ही नाम हैं, चावल के ही नाम हैं, पर हम उन सब का उपयोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, सिनोनिम्स हैं। तो जितने भी समानार्थी हैं उन सब का एक ही अर्थ में चूंकि वो प्रयुक्त होते हैं उन सब का अपन प्रयोग करते हैं, इसी को शब्द ने कहते हैं। एक उदाहरण समझाऊंगा दो मिनट में और सारा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो घबराना नहीं। हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए, लेकिन इतने होशियार नहीं है अपन की एक बार सुने और समझ में आ जाओगे। हो सकता है एक आध कोई ऐसा अभ्यास किया हो किसी ने। तो समविरूढ़ नय, जो रूढ़ी से जिस अर्थ में प्रयुक्त है शब्द उससे उसी अर्थ का प्रयोग करना जिसका काम है वो समविरूढ़ नय है। जैसे कि गाय शब्द है, गाय के लिए ही प्रयुक्त होता है, वैसे सामान्य रूप से जो चलती है उसे गवाह, उसे गाय कहते हैं। तो अब लेकिन ऐसा अर्थ थोड़ी कि जो चलते हैं उन सबको गाय कहेंगे, नहीं, जो गाय संज्ञा दी गई है वो पर्टिकुलर उसी शब्द में रूढ़ हो गई तो उसको ही हम गाय कह देते हैं, सब पशुओं को तो गाय नहीं कहते हैं। इस तरह से जो समविरूढ़ नय, अपने एक ही जिस जो शब्द जिस अर्थ के लिए रूढ़ है उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब उसके माध्यम से जो हम जानते हैं जिस तरह से कथन करते हैं वो सब समविरूढ़ नय का कथन कहलाता एवं भूत उस पर्याय से युक्त होना चाहिए। अब उस पर्याय से मतलब जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय ही पुजारी, हम खाना खा रहे हैं उस समय पुजारी जी नहीं कह रहे हैं। हाँ एवं भूत नय का तो काम है कि जिस समय जिस कार्य से युक्त हो, जिस पर्याय से वो युक्त हो, उसको वैसा ही कथन करना, तब हम उस चीज को जान पाएंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझा देते हैं तो आपके सब समझ में आ जाएगा, विषय सूक्ष्म होता चला जाता है। बहुत समय हो गया, थक भी जाता हूं फिर भी बहुत हो गया। एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे कि अपन ने यात्रा का विचार बनाया और कोई पूछे कहां जा रहे, बंबई जा रहे, अभी तो यात्रा का विचार ही कहा फिर भी हम उनको बंबई जाने वाला यात्री कह देते कि नहीं, विचार करने मात्र से। और अगर अपनी अटैची लगा रहा है कोई, फिर अपन उससे पूछे कहां जा रहा है, कहते बंबई जा रहा है, तो अटैची लगाते समय भी हमने उसको यात्री कह दिया, और अटैची लेकर के बाहर निकले तब तो यात्री कह ही देते हैं। लेकिन कोई कोई कहता कि अभी भी कैसे कह सकते, कहो आप नहीं भी जाएं, बीच में से लौट आएं। अब स्टेशन पर पहुंचने वाले को तो यात्री कहना ही पड़ेगा, कहते हाँ स्टेशन पे पहुंच गए, फिर भी और सूक्ष्म रूप से वो कहता कि नहीं स्टेशन पे पहुंचने वाले को भी यात्री कैसे कहें, टिकट लो पहले, टिकट ले ली तब हम यात्री कहेंगे, ठीक है टिकट लेने वाले को यात्री कहते, अभी भी हम नहीं कह सकते कि आप यात्री हो, ट्रेन में बैठोगे तब यात्री कहेंगे, तो ट्रेन में बैठने वाले को यात्री कहना, कहते अभी भी नहीं कह सकते, जब ट्रेन चलेगी तब हम आपको यात्री कहेंगे, तो ट्रेन चल पड़ी तब यात्री, यात्रा का विचार करने वाला भी यात्री, यात्रा का सामान इकट्ठा करने वाला भी यात्री, यात्रा के लिए सामान लेके घर छोड़ करके निकलने वाला भी यात्री, स्टेशन पे पहुंचने वाला भी यात्री, स्टेशन से टिकट खरीद करके यात्रा करने की तैयारी करने वाला भी यात्री, ट्रेन में बैठने वाला भी यात्री, और चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ ही वास्तव में यात्री है। पर यात्री कब से शुरू हो गया कहना, जब उसने प्लान किया था तब से, बताइएगा, संग्रह नैगम से लेकर के एवं भूत तक, इसी तरह तो हम रोज प्रयोग करते हैं इन सब चीजों का, और यही नये है, यही कथन की पद्धति है, इस तरह से हम जीवों को, पदार्थों को, सम्यक दर्शन आदि को जानते हैं, यही उपाय हैं। इस तरह पहले सूत्र में हमने मोक्ष का मार्ग क्या है और उसके जानने के क्या उपाय हैं, ये पूरी फिलॉसफी और लॉजिक पूरी की पूरी जानी, इस तरह ये पहला अध्याय हुआ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञनग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है, शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तब से नदी तट पर तल तल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर द्वारा हर दीवानी मानो भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां, तुमका जानी क्या कोई हो जग को दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणिया, शांति प्याज के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तमना सुरिखो परम